पृष्ठ संख्या 214 चतुर्दश अध्याय का दूसरा भाग, हेडिंग है फ्रेडरिक विलहेल्म जोजेफ सेलिंग सन 1775 से 1854। सेलिंग का जन्म जर्मनी के लियोनबर्ग नगर में हुआ था। वे अत्यंत बुद्धिमान छात्र थे और स्वल्प अवस्था में ही विविध दर्शनों का अध्ययन उन्होंने कर लिया था एवं बहुत से निबंध भी लिखने लग गए थे। वे हेगल के सहपाठी और मित्र थे। ट्यूबिगेन विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। जेना में वे फिक्टे के छात्र तथा सहायक भी रहे थे। फिक्टे जब जेना छोड़कर बर्लिन चले गए थे तो सेलिंग जेना में दर्शन के अध्यापक नियुक्त हुए। हेगल के साथ उन्होंने एक दार्शनिक पत्र का संपादन भी किया। म्यूनिक विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर सेलिंग वहां दर्शन के अध्यापक नियुक्त हुए। बाद में वे बर्लिन चले गए। उस समय यूरोप में रोमांटिक भावना की बाढ़ आ रही थी और सेलिंग ने भी उसमें बहुत योग दिया था। सेलिंग बड़े उदार हृदय, भावुक और लोकप्रिय थे। वे विज्ञान परिषद या एकेडमी ऑफ साइंसेज और शिल्प परिषद, एकेडमी ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स के अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी कृतियों का संग्रह 14 भागों में प्रकाशित हुआ है। सेलिंग के दर्शन में शुष्क तर्कों की अपेक्षा जीवित भावुकता अधिक प्रबल है। उन पर प्लोटाइनस, ब्रूनो, स्पिनोजा, बोहम, लाइबनिट्ज़, कांट और फिक्टे का प्रभाव पड़ा है। परिणामतः उनकी विचारधारा भी नया नया रूप लेती रही है। सेलिंग के दर्शन को 3 कालों में रखा जा सकता है। प्रथम काल में उनके दर्शन में प्रकृति या नेचर और आत्मा या स्पिरिट का विश्लेषण हुआ है। द्वितीय काल में ब्रूनो, स्पिनोजा और फिक्टे के प्रभाव के कारण अद्वैतवाद या आइडेंटिटी का विकास हुआ है और तृतीय काल में रहस्यवाद या पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का। इन तीनों का अलग अलग वर्णन आवश्यक है। पहले सेलिंग के प्रकृति और आत्मा के दर्शन पर विचार करें। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि फिक्टे के अनुसार आत्मा अनात्मा को उत्पन्न करता है और सेलिंग के अनुसार अनात्मा आत्मा को उत्पन्न करता है। कि फिक्टे का अध्यात्मवाद आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव है और सेलिंग का प्रकृतिनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव। किंतु यह धारणा ठीक नहीं है। न तो फिक्टे का झुकाव दृष्ट सृष्टिवाद की ओर है और न सेलिंग का वस्तुवाद की ओर। दोनों में जो अंतर है उसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए, अन्यथा उपयुक्त भ्रांतियां हो सकती हैं। पृष्ठ संख्या 215। फिक्टे और सेलिंग दोनों ही इस बात में सहमत हैं कि आत्मा और अनात्मा का, जीव और जगत का, ज्ञाता और ज्ञेय का, चित और अचित का आत्यंतिक विरोध नहीं है, और ये दोनों ही एक तृतीय परम तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। फिक्टे और सेलिंग दोनों के अनुसार यह परम तत्व निरपेक्ष है और चित शक्ति का रूप है। दोनों के अनुसार चित शक्ति संकल्प शक्ति रूप है। दोनों के अनुसार संकल्प शक्ति का रूप स्वचेतन सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसमें आत्मा और अनात्मा के भेद का समन्वय हो जाता है। दोनों के अनुसार इस समन्वय के लिए अनात्म तत्व की अभिव्यक्ति आवश्यक है। अब फिक्टे और सेलिंग दोनों में जो भेद है उन्हें भी जान लेना चाहिए। फिक्टे ने इस परम तत्व को आत्मा का नाम दिया है और सेलिंग ने इसे प्रकृति कहा है। न तो फिक्टे का यह परम आत्मा जीव आत्म रूप है और न सेलिंग की यह प्रकृति जड़ है। फिक्टे का यह आत्मा और सेलिंग की यह प्रकृति वस्तुतः परम तत्व है, जो जीव और जगत दोनों का अधिष्ठान है। फिक्टे ने नैतिक जीवन को महत्व देने के कारण इस परम तत्व को परम आत्मा या एब्सोल्यूट ईगो, जीवो को आत्मा ईगो और जगत को अनात्मा नॉन ईगो कहा है। सेलिंग ने कलात्मक भावुकता को महत्व देने के कारण इस परम तत्व को समन्यात्मक प्रकृति या ऑर्गेनाइज्ड नेचर, जीव को चेतन प्रकृति या ऑर्गेनिक नेचर और जगत को अचेतन प्रकृति या इनऑर्गेनिक नेचर कहा है। द्वितीय, फिक्टे के अनुसार जगत एक बंधन या बाधा है, जिसकी सृष्टि नैतिक जीवन द्वारा जीव के इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए या इस बाधा का अतिक्रमण करने के लिए की गई है। किंतु सेलिंग के अनुसार जगत बंधन रूप या बाधा रूप नहीं है, यह जीव के विकास के लिए आवश्यक है और सहायक है। तृतीय, फिक्टे के अनुसार परम तत्व की अभिव्यक्ति पहले जीव आत्मा के रूप में होती है और फिर अनात्मा के रूप में, किंतु सेलिंग के अनुसार यह अभिव्यक्ति पहले जगत के रूप में होती है और फिर जीव के रूप में। चतुर्थ, फिक्टे के अनुसार जगत जीव का प्रतिपक्ष या एंटीथेसिस है, किंतु सेलिंग के अनुसार जगत जीव का प्रतिपक्ष न होकर उसका पूर्व रूप या प्रिलिमिनरी स्टेज है। अब सेलिंग की प्रकृति का निरूपण करना चाहिए। सेलिंग के अनुसार यह जो अचेतन प्रकृति प्रतीत होती है वह वस्तुतः अचेतन नहीं है, उसमें व्यवस्था नियम प्रायणता और संगति है, वैसे ही जैसी बुद्ध में प्रतीत होती है। अतः जीव और प्रकृति दोनों का मूल स्रोत एक ही परम तत्व है। प्रकृति में प्राण शक्ति और चैतन्य अंतर्निहित है। जो जड़ प्रतीत होता है वह वस्तुतः सुप्त चैतन्य रूप है। प्रकृति में चेतनता विकसित नहीं हो पाई है, यह विकास जीव में संभव है। प्रकृति पहले जड़वत प्रतीत होती है, फिर इसमें वनस्पति रूप में प्राण शक्ति का विकास होता है, फिर पशु जगत में चेतना का विकास होता है और अंत में मनुष्य में जाकर यह चेतनता स्वचेतन बन जाती है। यह विभिन्न स्तर चैतन्य के विकास के सोपान मात्र हैं। प्रकृति और आत्मा दोनों एक रूप हैं। इस विकास का कारण मूल प्रकृति की संकल्प शक्ति है। यह संकल्प शक्ति अपरिमित और अगाध है। मूल प्रकृति अपनी इस संकल्प शक्ति के कारण अपने ही चैतन्य को आवृत करके जड़ जगत या बाह्य प्रकृति के रूप में प्रतीत होता है। फिर क्रमशः वनस्पति जगत और पशु जगत में प्राण शक्ति और संवेदन शक्ति के रूप में प्रकट होकर मानव जीव आत्मा में स्वसंवेदन या स्वचेतन या सेल्फ कॉन्शियस के रूप में प्रकट होता है। किंतु अभी भी यह पूर्णतया स्वचेतन नहीं हो पाती, क्योंकि जीव और जगत का भेद या विरोध बना रहता है। तब यह परमात्मा या वर्ल्ड सोल के रूप में समन्यात्मक स्वचेतन प्रकृति बनकर अपना स्वयं का ज्ञान करती है और जीव जगत के भेद को पार कर जाती है। यह परम तत्व समन्यात्मक या स्वचेतन प्रकृति है। जीव चेतन प्रकृति और जगत अचेतन प्रकृति है। अपने दार्शनिक विकास के द्वितीय काल में सेलिंग ने जीव और जगत के मूल स्रोत परम तत्व की एकता पर विशेष बल दिया है। जीव और जगत चेतन और अचेतन वस्तुतः एक हैं, क्योंकि एक ही परम तत्व के परिणाम हैं। यह परम तत्व पूर्णतया समन्यात्मक और स्वचेतन है। यह प्रकृति और आत्मा का अधिष्ठान है। यह चित शक्ति या संकल्प शक्ति रूप है। इसी को हम ईश्वर या पर तत्व कह सकते हैं। स्पिनोजा से प्रभावित होकर सेलिंग ने भी ज्ञान के दो स्तर माने हैं, एक तो विशुद्ध पारमार्थिक प्रज्ञा और दूसरा व्यवहारिक इंद्रिय संवेदन मूलक ज्ञान। व्यवहार में अनेकता, द्वैत भेद, विरोध, अपूर्णता की प्रतीति होती है। जीव और जगत का भेद प्रतीत होता है। परमार्थ में अद्वैत, अभेद, समन्वय और पूर्णता है। जीव और जगत का कोई भेद नहीं। ईश्वर में सब कुछ पूर्ण और एक रस है। परतत्व में सब कुछ निरपेक्ष, नित्य और पूर्ण है। वह किसी प्रकार के द्वैत प्रपंच को स्थान नहीं। समस्त व्यवहार इस परमार्थ की अभिव्यक्ति मात्र है। स्पिनोजा और सेलिंग में यह महत्वपूर्ण भेद है कि स्पिनोजा के दर्शन में विकासवाद को विशेष स्थान नहीं दिया गया, किंतु सेलिंग के दर्शन में विकासवाद का स्थान विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 217। समस्त सृष्टि मूल प्रकृति की संकल्प शक्ति का विकास है। समस्त पदार्थ इस विकास के सोपान हैं। प्लोटाइनस से प्रभावित होकर सेलिंग ने निरपेक्ष परम तत्व को पूर्ण अद्वैत ईश्वर या पिता को द्वैत विशिष्ट अद्वैत संकल्प शक्ति या पुत्र को अद्वैत में द्वैत और जीवात्मा को अद्वैतानुमुख द्वैत भी कहा है। प्रकृति द्वैतोन्मुख अद्वैत है और आत्मा अद्वैतोन्मुख द्वैत है। प्रकृति और आत्मा दोनों में त्रिक नियम पाया जाता है। प्रकृति में क्रमशः जिन रूपों का विकास होता है वे ये हैं, आकर्षण, विकर्षण और गुरुत्वाकर्षण, चुंबक, विद्युत और रासायनिकता, संवेदन, प्रतिवेदन और प्रजनन। आत्मा में विकास के सोपान हैं इंद्रिय संवेदन, प्रत्यक्ष और बुद्धि विकल्प, ये तीनों हैं। जीव की बुद्धि या चित्त शक्ति के धर्म, किंतु बुद्धि का परिपाक होता है संकल्प में। चित्त शक्ति को संकल्प शक्ति में परिणत होना पड़ता है। बौद्धिक जीवन को नैतिक जीवन में उठना होता है। स्वचेतन होने पर बुद्धि संकल्प का रूप ले लेती है। परम तत्व स्वचेतन है, अतः परम तत्व की अनुभूति के लिए बुद्धि को संकल्प बनना पड़ता है। नैतिक जीवन में परम तत्व की अनुभूति होती है। शेलिंग के दर्शन का तृतीय काल रहस्यवाद का काल है। इसमें शेलिंग ने यह बताया है कि स्वविकल्प बुद्धि के द्वारा परम तत्व का ग्रहण शक्य नहीं, यह कलात्मक अनुभूति से हो सकता है, क्योंकि कला में द्वैत का विलय हो जाता है। धार्मिक अनुभूति ईश्वर का उत्कट प्रेम कला की सर्वोत्तम अभिव्यंजना है और इसी रहस्य में परम तत्व की ज्योति का साक्षात होता है। परम तत्व आज संकल्प रूप है। इस संकल्प के द्वारा ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति जीव जगत के रूप में करके स्वयं को पूर्ण करते हैं। जगत में जो अमंगल और अशुभ प्रतीत होता है वह भी मंगल और शुभ के लिए ही है। मानव समाज के इतिहास की प्रगति ईश्वर को उत्तरोत्तर अव्यक्त कर रही है। धार्मिक अनुभूत के द्वारा जीव और जगत के द्वैत से ऊपर उठकर समन्यात्मक ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है।